हरिओम। पूज्य महाराज के पुनित शिष्यों में वंदन। पूज्य महाराज जी अष्टावक्र गीता, इस पर पूज्य महाराज जी प्रवचन करेंगे। महाराज जी जब भी आते हैं तो वृंदावन से आनंदवन की खुशबू लेके आते हैं और वही प्रसादी यहां प्रस्तुत होती है। जितने दिन महाराज जी यहां रहते हैं तो वो जो आनंदवन है वह हमारे बहुत नजदीक रहता है, ऐसा हम महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में, विचार में और जो उनकी जो धारा है वह भी अद्भुत रीत से उसी का प्रमाण है। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप प्रवचन धारा शुरू करें। हरिओम।
हरिओम। हरिओम। हरिओम। जनानां यद्गानं भ्रमति मिरहानं वितनुते पदाम्भोज ध्यानं दिशति परमानंद पदवीं। स्मरामि प्रातस्तं प्रणत जनता जुष्ट चरणं अखंडानंदं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, मुझे नाम पता नहीं है। अच्छा अच्छा। स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज के श्री चरणों में ओम नमो नारायणाय। उपस्थित सभी बद्धों एवं माताओं, आज से हम ये अष्टावक्र गीता का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 298 श्लोक हैं, तो 15 दिन में तो वो इतने करने संभव नहीं है। तो पिछले वर्ष जैसे विवेक चूड़ामणि में से संकलन करके प्रवचन किया था, ऐसे ही इसमें मैंने 40 श्लोक संकलित किए हैं और इसकी वो फोटो कॉपी करा ली है, तो आप यहां से ले सकते हैं। पुस्तक आपके पास हो तो भी उसमें ढूंढना पड़ेगा कहां से, सामने लिखित होता है ना तो उसमें विचार करने में आसानी होती है। ये विषय क्यों लिया, इसका भी एक कारण है। कारण यह है कि केवल फिलॉसफी से जीवन शुष्क हो जाता है। जीवन में जो नीरसता आती है वो या तो निष्ठा से आती है और या तो उसका जो प्रैक्टिकल रूप हो फिलॉसफी का उससे आती है। निष्ठा में तो निरपेक्ष स्थिति है और जो उसका प्रैक्टिकल रूप होता है हम जीवन में सबके साथ व्यवहार करते हुए उस अद्वैत सिद्धांत को कैसे आत्मसात किए रहें तो वही जीवन रसमय हो जाता है। तो फिलॉसफी तो बहुत सुनते हैं और मुझे ये ब्रह्मास्मि माला वाली पुस्तक देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो इसमें विषय है वही अष्टावक्र गीता का विषय है। तो आप लोगों की विचारधारा तो उधर बनी हुई ही है तो मैं कोई विशेष बात तो नहीं रखूंगा। अपना तो कालक्षेप होता है महाराज श्री के चरणों में श्रद्धा पुष्प चढ़ा देते हैं और आप लोगों के बीच में आके थोड़ा चित्त प्रसन्न हो जाता है। महाराज श्री के भक्त जहां जहां भी हैं उनसे सब जगह मिलके यही खुशी होती है। और महाराज जी का जीवन हम सब ने देखा है नारायण, इतना सरल सहज, कोई कह ही नहीं सकता था कि ये इतने ऊंचे विद्वान हैं और फिलोसोफर हैं और बच्चों में बच्चों की तरह से बुड्ढों में बुड्ढों की तरह से हर तरीके के जीवन में वो फिट थे नारायण। यही प्रैक्टिकल बात है। आइए थोड़ा सा इसमें प्रवेश करें। आपने नाम तो सुना है अष्टावक्र जी का, लेकिन इसके बारे में माइथोलॉजी अलग चीज है और विचार अलग चीज है। उनके आठ अंग टेढ़े थे ऐसा प्राय सुनने में आता है और पैदाइशी आठ अंग टेढ़े थे। आप सोचो कि आठ अंग टेढ़े वाला जब पैदा होगा और उस जमाने में जबकि ऑपरेशन से नहीं होते थे बच्चे, नारायण मां को कितना कष्ट हुआ होगा। और वो आठ अंग टेढ़े वाला जो है चलता कैसे होगा, तो सिवाय इसके कि लोड़क पोड़क रोलिंग करता और तो कोई इसका तरीका है नहीं। तो असल में वो आठ अंग टेढ़े थे ये तो कथा है। जैसे विश्वामित्र शब्द है तो विश्वामित्र का ये मतलब नहीं है कि जो विश्व जिसका अमित्र हो या जो विश्व का अमित्र हो उसमें आकार जो है विश्वामित्र, इसमें आकार का अर्थ नहीं है। विश्व का जो मित्र है वही विश्वामित्र है। ऐसे ही इसमें अष्टावक्र में अष्ट अवक्र जिसमें आठ टेढ़ेपन न हो उसको अष्टावक्र बोलते हैं, इसी को अष्टपाश भी बोलते हैं। तो आठ टेढ़ेपन कौन से हैं ये? तो घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेति पंचमी और कुलम, शीलम च वित्तम च अष्टापाशा प्रकीर्तिता। ये आठ पाश बताए गए हैं। पाश माने जैसे पशु को गले में रस्सी बांध के चाहे जहां ले जाओ, बस इन आठ पाशों से रस्सियों से मनुष्य जकड़ा हुआ है। घृणा, घृणा का कोई आधार नहीं होता है, बस हमें पसंद नहीं है। शंका, बाय से सभी ही ते डरे, जैसे कौआ जो है कभी स्थिर नहीं रहता, इधर देखेगा इधर देखेगा, इधर से ढेला न मार दे इधर से ढेला न मार दे, अरे साहब मेरा तो सब विरोध ही करते हैं, तो ये एक फोबिया होता है। ये शंका जो है कि मेरा सब अपोजिशन में है। घृणा, शंका, भयम, और डरना, ये भी पशु धर्म है। घृणा शंका भयम लज्जा, लज्जा माने ये नहीं कि बेशरम हो जाओ तो लज्जा छूट जाएगी, ये जो गलत काम करने में लज्जा नहीं आती है वहां पर जो निर्लज्ज है वो नहीं है। अब गुरु के सामने आप लज्जा में बैठे रहो, प्रश्न मत पूछो, तो कभी आपको ज्ञान हो सकता है? नारायण, माता के सामने लज्जा करो भूखे ही रह जाओगे, पिता के सामने लज्जा करो तो कुल परंपरा का ज्ञान ही नहीं होगा, समाज के सामने लज्जा करो तो कभी पॉपुलर हो ही नहीं सकते आप। घर में घुसे रहो, ये असामाजिकता भी एक अवगुण है। वैराग्यवान लोग तो कहते हैं हमें किसी से मतलब नहीं है, हम तो ठीक है कुटिया में भीतर पड़े हैं, लेकिन बाहर क्या है? जो भीतर है वही तो बाहर है। जब तक बाहर भीतर का भेद है नारायण, तब तक वैराग्य की भूमिका तो है वो, लेकिन ज्ञान की भूमिका नहीं है। और जुगुप्सा, दूसरों की निंदा करना, जे सब की निंदा करें ते चिमगादड़ होए अवतरें, तो सीधास जी ने लिखा कि जो सबकी निंदा करते हैं अगले जन्म में चिमगादड़ बढ़ेंगे। तो निंदा करने का भी एक स्वभाव है। अखबार में और क्या है, वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता है, उसकी निंदा करता है। और फिर जब चुनाव हो जाएंगे तो वो कहते हैं हम तो निंदा के लिए थोड़ी निंदा करते थे, जरा हमारा परमिट बनवा देना जो उसकी निंदा करता था वही परमिट बनवाने पहुंच जाता तो जुगुप्सा। और जो आदमी निंदा करेगा वो किसी की स्तुति भी करेगा, इसी द्वंद्व में पड़ा रहता है। निंदा स्तुति, निंदा स्तुति उभय सम, संतों का लक्षण बताया कि निंदा और स्तुति दोनों में उभय में सम रहता है, फूलता पटकता नहीं है। वो दादू दयाल के बारे में कहते हैं ना, कोई माता जो है उनकी बड़ी निंदा करती थी, तो उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी वो माता आपकी बड़ी निंदा करती है। कह रहे नहीं, वो किसी और की निंदा करती होगी, दादू नाम का कोई और होगा उसकी निंदा करती होगी, इतने में वो आई क्यों ना जाए वो माता जी। उसने सुन लिया वो, तो बोले तेरी निंदा करती हूं। बोले मेरी, क्या समझती है तू मुझे? तो उनके सिर पे हाथ धर दिया, बोले इसी तेरी की निंदा करती हूं। अरे बोले देखो देखो, ये तो अन्नमय कोष की निंदा करती है, इसकी तो निंदा हम रोजा नहीं करते मतलब बात को लाइटली ले करके और उसे सहन कर लेना, ये युक्ति है। महाराज श्री बोलते थे ना कि सुख बनाने की युक्ति आनी चाहिए, दुख नाम की चीज कहीं है नहीं, लेकिन सुख बनाना नहीं आता। सुखी रहो और सुखी रखो, ये प्रैक्टिकल बात है ना। और छठी चीज बताई कि कुल, कुल का अभिमान बहुत होता है, हम इतने बड़े कुल में पैदा हुए। अभिमान सामाजिक रीति से अच्छा है, लेकिन वहां लिखा ना आसुरी संपत्ति में, जो आसुरी संपत्ति में तो अभिमान बहुत होता है और दैवी संपत्ति में नाति मान्यता, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मान्यता। अतिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान तो होना चाहिए, लेकिन महाराज श्री कहते हैं कि ये भी गृहस्थों के लिए है, महात्मा के लिए तो मान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मान जहे एकौ नाही निर्मान मोहा। मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रादि पक्षयो। तो ये मान जो है ये अपने को परिमित सीमित मान करके ही होता है, परिच्छिन्न मान करके ही मान होता है। तो ब्रह्म तो नारायण परिच्छिन्न है नहीं, तो अगर मैं ब्रह्म हूं तो मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, परिच्छिन्न नहीं हूं तो मान अपमान दोनों से परे हूं। कुलम शीलम, अपने चाल चलन का मेरा चरित्र बहुत अच्छा है। एक तो है कि वक्त पर कोई अच्छा काम कर दिया और बाकी टाइम फिर अपना स्वभाव जैसा है वैसा करते हैं, और जिनका शील अच्छा करने का है वो हर समय अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं होगा उनसे। तो बोले ये करो लेकिन शीलता का अभिमान नहीं होना चाहिए। कुलम शीलम इस और वित्तम, अब ये तो सबको मालूम ही है ना रहे, ये तो सबसे बड़ा लोभ वो अभिमान जो है आजकल पैसे का ही है। तो जितने चुनाव में खड़े हुए हैं सबकी संपत्ति का ब्यौरा निकल रहा है ना अखबारों में, मतलब दो चार करोड़ वाले तो दो चार ही होंगे, बाकी तो जो है सब ऊंचे ऊंचे ही हैं, वो तो करोड़ों खर्च करेंगे और फिर करोड़ों निकालेंगे उसमें से, कहां से ईमानदारी एक्सपेक्ट करते हो। तो नारायण कुलम शीलम से वित्तम से भगवान ने दिया है तो उसका सदुपयोग करो, दान दो, स्वयं भोग करो, और नहीं तो सरकार तो ले ही लेगी, आगे पीछे डाकू ले जाएंगे और क्या। सो धन धन्य प्रथम गति जाके। तो नारायण कुलम शीलम च वित्तम च, ये आठ पाश जो हैं ये मनुष्य के लगे हुए हैं, इनसे ये मनुष्य टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा ही टेढ़ा चलता है। अभिमानी व्यक्ति की चाल से ही पता चल जाता है कि अभिमानी है कि नहीं। तो इनमें ये आठ वक्र नहीं थे, मतलब पूरे महात्मा थे अभिप्राय। इनके पिता का नाम था कहोल, तो ये वही कहोल हैं जिनका याज्ञवल्क जी से शास्त्रार्थ हुआ है बृहदारण्यक में। तो विद्वान थे, और पहले असल में ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का इतना वाटरटाइट विभाजन नहीं था। ऋषि लोग जो थे ये सब या तो गृहस्थ थे या तो फिर कर्मकांडी थे, और जो जैसे याज्ञवल्क थे तो कर्मकांडी तो थे लेकिन ज्ञान कांड में भी माहिर थे, उसकी निष्ठा के लिए फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, तो तब वो महात्मा हुए। लेकिन जब तक वो ब्राह्मण वेश में रहे तब तक तो दोनों चलते थे। तो ये कहोल जी उनके प्रश्नोत्तर जो हैं वहां बृहदारण्यक में, उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बहुत ऊंचे आध्यात्मिक व्यक्ति थे नारायण, लेकिन विद्वान थे, कर्मकांडी थे। तो उधर हुआ ये कि वरुण लोक में कोई यज्ञ हो रहा था तो वहां ब्राह्मणों की कमी पड़ गई, तो बोले धरती से लाओ। कहां से लाएं कि जनक जी की सभा में जो है ब्राह्मण लोग बहुत आते हैं, तो वहीं जाओ। तो वहां उन्होंने अपना एक विद्वान भेज दिया और बहाना ये लगाया कि शास्त्रार्थ करेंगे, जो शास्त्रार्थ में हार जाएंगे उसको हम पानी में डुबो देंगे सजा के रूप में। लेकिन उसका मतलब तो यही था कि पानी में वरुण के दूत जो है ले जाके उसे यज्ञ में बिठाल देंगे। तो उसमें कहोल ऋषि भी आ गए चक्कर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा पंडित था। अब जब बहुत दिन हो गए और कहोल घर नहीं पहुंचे, तो इन्होंने अष्टावक्र जी ने पूछा कि पिताजी कहां गए, क्या हुआ? तो बताया कि उनको डुबो दिया गया और शास्त्रार्थ में हार गए। और ये सहन नहीं हुआ नारायण से, अब वो आए लुढ़कते पुढ़कते, जैसे भी आए होंगे अष्टावक्र। तो जनक की सभा में जब पहुंचे तो सब लोग देख के उनको हंसने लगे, आठ जगह से टेढ़े लुढ़क पुढ़क के चल रहे ना रहे। तो उन्होंने पूछा जनक जी से कि ये मिट्टी पे हंस रहे हैं कि कुम्हार पे हंस रहे हैं, वहां की अपनी बोली पे बोले वो, ये मिट्टी पे हंस रहे हैं कि कुम्हार पे हंस रहे हैं? कुम्हार तो सब सारी दुनिया का एक ही, उसी एक ने ही सबके शरीर बनाए हैं और सबके शरीर में वही पंचभूत है, तो किस पे हंसते हैं? ये वो जालिम सिंह की टीका है इसकी, अष्टावक्र गीता की। तो उसमें तो लिखा है ये सब चमार हैं जितने हंसने वाले हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है चमड़े के ऊपर है। आजकल नारायण ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है ये चमार, आप चर्मकार तो कह सकते हो, चमार नहीं कह सकते हो। तो उसमें लिख रहा है कि ये सब चमार, बोले क्योंकि ये चमड़े की पारखी है, इस शरीर में जो है उसकी तो पारखी है ही नहीं। अब जनक जी समझे कि भाई अब तो ये कोई महात्मा है, और थे छोटी उम्र के, तो वहां शास्त्रार्थ करने लगे। शास्त्रार्थ का जो विषय था वो महाभारत की कथा से शायद जोड़ दिया गया है। महाभारत में कथा है कि राजा जनक जो है वो खा पी के अपने आराम से सोए, और सपने में देखा उन्होंने कि मैं भिक्षुक हो गया। सपने होए भिखारी नृप, तो वो भिखारी हो गए सपने में, और भिक्षा मांगने के लिए गए तो कहीं भिक्षा नहीं मिली, भूख के मारे तड़प रहे थे, तो किसी ने जो है चावल दाल दिए और एक कहीं से हांडी मिट्टी की उठाई और उसमें खिचड़ी बनाने के लिए उपक्रम करने लगे, आग वाग जला के। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और वो उससे आके टकराए, उसको भी चोट लगी, हांडी भी फूट गई, खिचड़ी भी नहीं बनी, भूखे के भूखे रह गए। तो उस व्यथा से उनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई तो देखा मैं तो महल में पड़ा हुआ हूं और खा पी के ही सोया था, भूख भूख तो कहीं कुछ नहीं है मेरा। तो यद्यपि राजा जनक को कोई शंका नहीं थी, लेकिन चाहिए तो सही ना कोई इशू बात करने के लिए, तो सभा में जाके उन्होंने यही प्रश्न रख दिया कि पंडितों ये बताओ कि ये सत्य है कि वो सत्य है, अब ये ना बतावे कि ये और वो क्या है। मतलब उनका था कि ये जागृत अवस्था जो ये सत्य है या जो स्वप्नावस्था में देखा वो सत्य है। पंडित लोग आपस में चौंचे लड़ाने लगे, शास्त्रार्थ का कोई खास मतलब नहीं होता, अपनी अपनी भड़ास निकालते हैं। पहले विद्यार्थी लोग शास्त्रार्थ करते थे तो उससे उनकी बुद्धि कुशाग्र होती थी। अब वो विद्यार्थी लोग स्वयं नहीं करते, वो पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो जैसे मुर्गे लड़ाते हैं ना, तो बोले हमारे विद्यार्थी तुम्हारे विद्यार्थियों से चौंचा लड़ाएंगे, देखें किसके अच्छे हैं। चलो वहां तक भी कोई बात नहीं है। फिर नारायण शास्त्रार्थ होने लगे, उसमें शस्त्रार्थ होने लगा, फिर डंडा चलने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर बंद कर दिया, बोले लड़ाई की झगड़े है, छोड़ो इसको। तो वहां शास्त्रार्थ होने लगा। इतने में वहां यज्ञ पूरा हो गया था वरुण लोग का, तो जो ब्राह्मण लोग गए थे उनको छोड़ दिया गया, तो उनके पिताश्री भी चलते हुए आ गए। वहां आ गए तो जो उनका रोष था अष्टावक्र जी का, वो तो समाप्त हो गया। तो अष्टावक्र जी से पूछा कि इसका तो निर्णय कर जाओ ना, ये सत्य है कि वो सत्य है। तो बोले राजन, न ये सत्य है न वो सत्य है, यह और वह, ये दोनों जिसके मालूम पड़ते हैं, ये और वह जिसमें मालूम पड़ते हैं, जिसको मालूम पड़ते हैं वो तो सत्य है, और जो मालूम पड़ता है वो सत्य नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाय। वो परमात्मा इतना सत्य है, आत्मा इतना सत्य है, इतना सत्य है कि उसमें झूठ भी सच्चा मालूम पड़ता है। तो ये अष्टावक्र जी के साथ कथाएं जुड़ी हुई हैं। यहां जो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्धि है वो जनक और अष्टावक्र जी के बीच में जो संवाद कभी हुआ है वो उसके है, लेकिन ये कल्पित है नारायण, क्योंकि जनक जी के गुरु तो याज्ञवल्क थे, अष्टावक्र जी नहीं थे। लेकिन इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु थे, और जैसे शिष्य गुरु से प्रश्न करता है गुरु उत्तर देता है ऐसा है। महर्षि ने इसकी भूमिका में लिखा है कि इसे आप कथानक क्यों मानते हैं, ये तो वेदांत की शैली है, जो भी बात कही जाती है वो गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही कही जाती है, उसमें गुरु भी कल्पित होता है और शिष्य भी कल्पित होता है। तो बोले ए ने बी से पूछा, अब ये ए ना जो पूछने वाला है वो शिष्य है, जिससे पूछा वो गुरु है ना। तो यहीं से ये अष्टावक्र गीता प्रारंभ होती है। कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। ये इसमें पर्चे में नहीं दिया है मैंने श्लोक, ये तो इसमें से किताब में से पढ़ दिया संगति लगाने के लिए। तो जनक जी पूछ रहे हैं कि कथम ज्ञानम अवाप्नोति, भगवान ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे, ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कथम मुक्तिर भविष्यति, और मेरी मुक्ति कैसे होगी, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और मुझे वैराग्य नहीं है, मैं तो राजा हूं, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो मेरे लिए तो मुक्ति बहुत दूर है। ये हमारे आपका भी तो यही प्रश्न है नारायण, वेदांत के ग्रंथों को सुनकर के और विरक्त महात्माओं के मुंह से सुनकर के ये लगता है कि अरे हम तो कहीं अभी है ही नहीं, इस जन्म में तो हमें कहीं ज्ञान हो नहीं सकता है नारायण। तो ये जो असंभावना हमारे चित्त में बैठ गई है, इस असंभावना को निकालने के लिए ये ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है। कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, जो चीज मुक्त है वही मुक्त होती है, और जो चीज बंधन में है वो हमेशा बंधन में रहती है। आज तक शरीर किसी का मुक्त हुआ है और आत्मा सबकी मुक्त रह रहा है। तो शरीर कैसा भी हो और किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी जाति का हो, सब में एक ही आत्मा है और वो नित्य मुक्त है। ये बात किसी तरह से यदि बैठ जाए मन में तो ये फिर साधन जो है गौण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वेदांत साधन का खंडन करता है, लेकिन साधन की पूर्णता को भी समझना चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी साधक ही बने रहेंगे। कभी उस सिद्धावस्था का भी तो जीवन मुक्ति जिसे बोलते हैं वो तो कभी अनुभव में आएगी ही नहीं। जीवन मुक्ति कोई सन्यासी नहीं होता है ना, जीवन मुक्त तो हर आश्रम में, हर वर्ण में, हर स्थिति में जीवन मुक्त है। जीवित रहते हुए ही जो मुक्त है, तो ऐसा तो आत्मा ही है। जब तक ये शरीर चलता है तो उसको जीवित कहा जाता है, शरीर नहीं चलता है तब भी आत्मा में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये तीन प्रश्न उन्होंने किए, ये आप मेरे को समझाइए। इन्हीं तीन प्रश्नों के आधार पर ये सारी अष्टावक्र गीता है, और कहीं प्रश्न नहीं है इसके आगे, बस यही प्रश्न है। अब उत्तर देना शुरू करते हैं, ये आपके पर्चे में है। मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यजो क्षमार्जव दयातोषो सत्यम पीयूषवत् भजो। मुक्तिम इच्छसि चेत्तात, हे तात, तात कहते हैं, पिता को भी तात कहते हैं, जिससे विस्तार हो, तनु विस्तारे से तात शब्द बनता है ना। तो वंश का विस्तार पिता से होता है, पिता को भी तात कहते हैं, बेटे को भी तात कहते हैं, क्योंकि वो भी आगे वंश का विस्तार करेगा, और शिष्य को भी तात कहते हैं। ये प्यार के शब्द है ना, आत्मीयता। गुरु को भी तात बोलते हैं, पितातुल्य हो गए गुरु, इसलिए तात कहते हैं। तो कहते हैं तात, अष्टावक्र जी कह रहे हैं, हे तात, हे प्यारे, मुक्ति में इच्छसि चेत, चेत माने यदि, यदि तू मुक्ति की इच्छा करता है, ये जरा सोचने की बात है। देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए गए। तो अर्थ और काम, काम तो, काम पुरुषार्थ तो सबको होता है, किसी से सीखना नहीं पड़ता है। काम में केवल स्त्री पुरुष विषय काम ही नहीं होता है, इच्छाओं जितनी भी हैं वो सब काम के ही अंतर्गत है। कुछ पा करके हम सुखी हो जाएं, इसी को काम बोलते हैं। अच्छा, और इसके लिए अर्थ चाहिए, तो अर्थ कमावे, ये भी पुरुषार्थ काम के बाद सिद्ध हो जाता है। अब धर्मपूर्वक कमावे और धर्मपूर्वक भोगें, कि अधर्मपूर्वक भी कमा लें और भोग लें, तो अब तो यही बोलते हैं कि भाई जैसे भी हो कमाओ और भोगो। लेकिन शास्त्र का नियम यह है कि धर्मपूर्वक कमाओ और धर्मपूर्वक ही भोगो। उससे सुख सुख तो रहेगा लेकिन दुख नहीं आएगा। और अधर्म पूर्वक यदि हम कमाएंगे और भोगेंगे तो दुख आना लाजमी है, आप उसे हटा नहीं सकते। अच्छा, मोक्ष पुरुषार्थ की इच्छा नहीं होती, बुढ़े बुढ़ों की भी इच्छा नहीं होती, बिल्कुल कब्र में पैर लटकाए पड़े हैं वो भी मुक्ति नहीं चाहते। भगत लोग भी मुक्ति नहीं चाहते, वो कहते मुक्ति में क्या धरा है, जब सब कुछ नष्ट ही हो जाएगा हम ही नहीं रहेंगे। तो उस मुक्ति के सुख का कौन भोगेगा, कौन जानेगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी मुक्तियां कल्पित कर ली, हम तो अपने ठाकुर जी के लोक में रहेंगे, सालों पिसारू पिसामी पिसायुज। फिर साष्टी भी जोड़ दी उसमें, पहले चार ही थी अब पांच हो गई। और बोले कैवल्य, बोले कैवल्य नहीं चाहिए, छोटू अकेले ही रह जाए, कोई दूसरा रहे ही नहीं तो हम तो बोर हो जाएंगे, उस कैवल्य तो जो है बोरियत का हिस्सा है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, कहे पुराण निगम आगम पद, सगुण उपासक मोक्ष न ले। लेकिन जो सगुण उपासक है उनको तो मोक्ष चाहिए ही नहीं है, तो मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। उम्र बढ़ जा मराव हो जाए तो अभी मोक्ष की इच्छा नहीं होती, मरने की भी इच्छा नहीं होती, मोक्ष की तो बात ही छोड़ो। वो सुनते हैं कोई व्यापारी बनिया था मतलब, तो घूमने गया तो कोई अंधा कुआ था उसमें पैर फिसल गया, पानी वानी तो था नहीं और ज्यादा गहरा भी नहीं था, अब भीतर पहुंच के हल्ला मचाने लगा, निकालो निकालो। दूसरे लोग आए तो गांव के ही लोग थे, पहचानते थे उसे, तो काफी मतलब निचाई पे ही था तो ऊपर से हाथ नीचे को कर रहे, बोले लाला हाथ ले, नहीं हाथ दे, हाँ लाला हाथ दे, अपना हाथ दे हम पकड़ के खींच लेते हैं तुझे। अब वो लाला जो है वो ऊपर को तो हाथ करे और फिर नीचे को डाउन कर दे। एक बुड्ढा बोला तुमसे नहीं निकलेगा। अपना लहजा बदलो, ये बनिया है लेने की बात समझता है देने की बात नहीं सोचता है। आज इससे कहो कि लाला हाथ ले, तो हाथ उसी फिर हाथ उसने कहा लाला हाथ ले, सो खट से पकड़ ले दिखा ले। ये तो हंसाने के लिए चुटकुला समझ लो इसे, लेकिन प्रवृत्ति जो है मूल में वो कैवल्य की इच्छा नहीं होती, इसलिए कि वहां कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर जाके क्या करेंगे। मुक्ति की इच्छा यदि किसी में उत्पन्न हो जाए तो अनंत जन्मों के शुभ संस्कार और ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए, उससे पहले नहीं होती। और अगर हो जाए तो किसी के बाप की बस की नहीं है जो उसको रोक लेना, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से ही होती है अगर होती है तो। अब नहीं होगी, अगले जन्म में हो जाएगी बस। वैसे तो तीन जन्म का ठेका लेते हैं तो तीन में पिछले जन्म में कुछ था तब तो इस जन्म में इच्छा हो गई तो दो तो निकल गए, अब इस जन्म में अगर नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म और लगेगा, लेकिन रुक नहीं सकती उसकी बात अगर वास्तविक इच्छा हो गई तो। और इच्छा होती है असल में संग से, आप जैसे लोगों का साथ करोगे वैसी इच्छा जागृत हो जाएगी। بزنس مین کے ساتھ رہو، کیا دو آنے کی پتی ڈال دو اس میں. اب پہلے تو آنے ہی بولتے تھے، اب دو آنے کی پتی ڈلوا دیں گے. وکیلوں کے پاس بیٹھو، بولے کوئی بات نہیں، نوٹس بھیج دیتے ہیں. اب نوٹس کے بعد جب مقدمہ چالو ہوگا تب سب وصول کر لیں گے. پرورتی بن جاتی ہے. تو آپ مہاتماؤں کے ساتھ رہو تو موکش اچھا جاگرت ہو جائے گا. مہاتماؤں میں بھی جو زیادہ کھٹپٹیا لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو تو جو تھوڑی بہت ہوگی وہ بھی مر جائے گی. اڑیا بابا جی مہاراج بولتے تھے کہ سادھکوں کو، اس زمانے میں کی بات تھی، کہ سادھکوں کو ہر دوار میں کنکھل کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں بڑے بڑے مہاتماؤں کے بڑے بڑے محل بنے، نام تو کٹیا ہیں ان کے لیکن ہیں سب بڑے بڑے محل. تو ان کو دیکھ دیکھ کے ان کے من میں بھی ہوتا ہے ایک چھوٹا سا آشرم تو ہم بھی بنوائی لیں، کوئی بات نہیں. تو جیسا ساتھ ہو ویسی اچھا ہوتی ہے. تو مہاتماؤں کے ساتھ میں رہنے سے یہ اچھا اتپن ہو جاتی ہے. اور اپنے آپ، اچھا مہاتماؤں کا سنگ کب ملے گا؟ وہ جب ایشور کی کرپا ہوتی ہے. تو پنیہ پنج بن ملائی نہ سنتا، ایک تو یہ بات بتائیے، آپ کے ہی پنیہ پنج ہوں تو سنت مل جاتے ہیں، اور بن ہری کرپا ملائی نہیں سنتا، بھگوان کی کرپا ہو جائے تو ابھی سنت مل جاتے ہیں. اور سنت وشدھ ملائی پرتے ہی چت وہی رام کرپا کر جے ہی، وشدھ سنت انہیں کو ملتے ہیں جن پر رام ذرا پریم سے کرپا کرتے ہیں. چت وہی، ارے اس جیو کو تو بلا ہی لو گئے، تو پھر وشدھ سنت کو بھیجائیں گے. تو وشدھ سنت کون ہوتے ہیں؟ اب جیسے سوامی جی کو دیکھ کے لگتا ہے وشدھ سنت جو ورکت لوگ ہیں اور اسی ویدانت ویتھیوں میں وچرن کرتے ہیں نا، تو ان کو دیکھ کر کے آپ کو بھی ورکت ہونے کی اچھا ہوگی، موکش کی اچھا جاگرت ہو جائے گی. یہ جتنا بھی سادھن ہے، پیسہ ہے اور بھی آسائش کی جتنی چیزیں ہیں، یہ تو سب یہیں چھوڑنے کے لیے ہے، اس ساتھ تو جاتا ہی نہیں. اس لیے اس سے اپنا کام نکالنا ہو نکال لو، اس کی جو ہے لالسا میں سارا جیون نہیں بتانا چاہیے. یہ اپنے یہاں جو آشرم ویوستھا رکھی تھی وہ بہت سوچ وچار کر کے رشیوں نے رکھی ہے. شنئی شنئی آدمی جو ہے وہ ورکت ہوتا جاتا تھا. گرہستھی بھی ورکت ہونے ہی کے لیے ہے. کتنی جگہ سے آدمی اپنے کو بچا لیتا ہے اور پھر انت میں جو ہے وانپرستھی میں چلے جاؤ اور پھر سنیاس ہو جاؤ. تو مکتم اچھسی چیتا، تو ایک تو اس وجہ سے بھی اچھا نہیں ہوتی، اور ایک کارن اور ہے، جو چیز آپ کو پہلے سے پراپت ہے اس کی بھی اچھا نہیں ہوتی ہے. پہلے سے پراپت ہو اور اسے پراپت کرنے کی ویگرتا ہو، جیسے ہمارا چشمہ کھو جائے مان لو، اور چشمہ کے بنا پڑھ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے، تو چشمہ ضرور چاہیے، چشمہ ضرور چاہیے. میرا چشمہ کہاں گیا؟ تمہارا جی تو ایسے اوپر چڑھا لیتے تھے نا یہاں پھر چشمہ کہاں؟ پھر مہاراج جی آپ کے ارے بھائی تو چشمہ پراپت تو ہے لیکن اب پراپت سا بھاست ہو رہا ہے نا، اور اس کی ہم کو آوشیکتا بھی ہے، تب اس کی اچھا جاگرت ہوگی کہ چشمہ ملا. اب اگر آوشیکتا جاگرت نہیں ہوتی ہے تو آتما پراپت ہوتے ہوئے بھی اس کی اچھا جاگرت نہیں ہوگی. تو یہ سن سن کر کے دیکھ دیکھ کر کے ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں مکتی میں اچھا سی چیت, یدی تم مکتی کی اچھا کرتے ہو تو سادھو سادھو, یہ تو ایشور کی کرپا ہو گئی. اب سنو, تم پوچھ رہے ہو کیسے مکتی ملے گی, تو وشیان وشوتیہ جو, اب پہلے ہی بوم شیل چھوڑتے ہیں نا. یہاں اس میں چھ سادھن انہوں نے گنائے ہیں. تیج, بھج, ودھی, تشٹھسی, سکھی بھو اور سکھم چر, یہ چھ کرم میں اس کو پورا کریں گے. کیا چھوڑنا ہے تیج, اور کیا پکڑنا ہے, کیا سیون کرنا ہے بھج, اور کیا جاننا ہے ودھی, اور کہاں بیٹھنا ہے, کس استھتی میں تشٹھا سے, اور سکھانوبھوتی ہوئی کہ نہیں, سکھی بھاو, اور پھر ویوہار کرو. ویوہار مانے دکانداری سے ہی مطلب نہیں ہوتا ہے, اپنے سوبھاو کے انوسار جہاں بھی پلیسمنٹ بھگوان نے کیا ہے اسی حساب سے کرو. مہاتما بنایا تو مہاتما کا ویوہار کرو. ویوہار سوبھاو کے انوسار ہوتا ہے, اور گیان جیسا شاستر میں ہے ویسا ہوتا ہے, وستو کے انوسار گیان ہوتا ہے. نارائن, تو اب کہتے ہیں کہ تیج کیا چھوڑنا ہے, پہلے تو پرہیز بتا رہے ہیں. وشیان وشوت تیجو, وشیوں کو وش کے سمان چھوڑ دو. ہمیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں, وش تو لگتے ہی نہیں ہیں, تو کیا ہیں یہ وش؟ نہیں, پانچوں اندریاں آپ ٹھپ کر لو, ذرا کلپنا کرو کسی کی بھی پانچوں اندری ٹھپ ہو جائے تو کیا جیون رہے گا اس کا. وشیوں میں کوئی دوش نہیں ہے, دوش تو سارا, اور نیتروں میں بھی کوئی دوش نہیں ہے, اندریوں میں بھی دوش تو ان کے پیچھے جو انتکرن ہے سارا کا سارا اس انتکرن میں ہے. تو جہاں ہم سکھ بدھی سے وشے کو گرہن کرتے ہیں وہاں تو ہم پھساوٹ اپناتے ہیں, اور جہاں صرف کرتویہ بدھی ہوتی ہے سکھ بدھی نہیں ہوتی ہے وہاں ہم کرتویہ پورا کر کے اس سے نکل جاتے ہیں, اور جہاں دوش بدھی سے گرہن کرتے ہیں تو وہ دوش بدھی بہت پریشان کرتی ہے. اس سمے تو بچ جائیں گے لیکن وہ من میں جو للک ہے نا, کون سا شلوک ہے نا, وشیا ونورتنتے نراہارسیہ دیہنا رسورجم رسوپیسیہ پرم درشٹوا نورتن. آپ نے وش سمجھ لیا, اب اندریوں کو تو روک لیا آپ نے, لیکن بھیتر تو یہ ہے نا کہ اس میں رس ہے, تو رسورجم رس کی نورتی نہیں ہوتی اندریوں کو روکنے سے. تو پھر یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے, یہی لکھا ہے اسی لیے کہ مکتی کے موکش دھرم کے انکول جو وشے ہوں ان کا تو سیون کرو, اور اس کے جو پرتیکول ہوں ان کو وش کے سمان چھوڑ دو. سب وشیوں کو چھوڑ دو ایسا کہنے میں تاتپریہ نہیں ہے. وشیان وشوتیہ جو, اب تیاگ تو پرہیز تو ہو گیا, اب دوائی اور بتاتے ہیں. بولے پانچ پڑیا ہیں بھیا, ایک تو پرہیز ہے اور پانچ پڑیا ہے. کائے کائے کی پڑیا ہیں کہ اپنے جیون میں کھما اور آرجو مانے سرلتا और दया क्या सहानुभूति और संतोष और सत्य, ये पांच पुड़िया का सेवन करना। अब एक बात तो बता ही देता हूं, तो देखो क्षमा है, ये आप गीता में देखोगे सब में है, ये भक्तों के लक्षणों में भी है और ज्ञान के साधनों में भी है, दैवी संपदा में भी है, क्षमा सब जगह है। लेकिन क्षमा का जो दृष्टिकोण है वो उसको समझना चाहिए। हम दूसरों को क्षमा क्यों करें? अपराध किया है उसने और फिर हम क्षमा कर दें उसे? तो महाराज श्री ने किसी अपने कैलेंडर में कहीं लिखा है कि आप अपने द्वारा किए हुए अपराधों को खुद क्षमा करते हैं कि नहीं। दांत से जीभ कट जाए तो लोढ़ा लेकर दांत को फोड़ते हो? क्षमा ही तो करते हो ना। तो जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरे के द्वारा यदि अपराध हो जाए, और ये आपको बताया ही जा रहा है कि एक ही आत्मा है, तो दूसरे ने अपराध जो किया है वो भी तो अपना ही किया हुआ अपराध है ना रे। अपराध तो शास्त्र के विपरीत है, इसलिए तो उसका नाम अपराध है, लेकिन है तो अपना ही किया हुआ ना। तो अपने अपराध समझ करके क्षमा करना चाहिए, ये तो मुक्ति का साधन हो जाएगा क्षमा। और वो जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि क्षमा कर दो, ये सशक्त का काम है, कमजोर आदमी क्षमा नहीं कर सकता है, कमजोर क्षमा करेगा तो इसलिए कर देगा भैया ये मैं एक मारूंगा या चार मारेगा मैं, इसलिए पहले क्षमा कर दो। बोले ये कोई क्षमा नहीं। वो कहता है चार तो मैं मार सकता हूं लेकिन चल नहीं मारता हूं, लेकिन उससे उसमें द्वेष की भावना नहीं जाएगी, वो जो क्षमा है। और ये आत्मा के एकत्व के कारण जो क्षमा है, ये आपको आत्मा के एकत्व में स्थित कराएगा, इसलिए ये क्षमा तो मुक्ति का साधन है। और वो जो क्षमा है वो व्यावहारिक है, कहीं क्षमा करना पड़ता है, कहीं क्षमा मांगनी पड़ती है, ऐसे ही। और आज जब ऋजुता, ऋजुता माने स्ट्रेट लाइन, जिसमें कोई किंक्स ना हो, दुराव छिपाव ना हो, जीवन आपका बिल्कुल सपाट होना चाहिए। खुली किताब, एक कल्याण में कभी लेख निकला था, आपका जीवन एक खुली किताब होना चाहिए, बहुत पुराना लेख था। तो उस समय ज्यादा नहीं समझते थे, छुटपन की बात है, लेकिन बाद में समझ में आई। खुली किताब का मतलब यह है कि आप छिपाते क्यों हैं किसी चीज को। नेहरू जी ने इंदिरा को पत्र लिखा, पाप क्या है मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन जिस काम को छिपा करके तुम करना चाहो समझ लो वो पाप है। अरे सब चीज उजागर है ना, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि अपने सारे रहस्य लिख करके तख्ती पे और उनको जो एडवर्टाइजमेंट करते पे रहो, बताना नहीं है लेकिन छिपाना भी नहीं है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।